الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تجربات کی دنیا زندگی کے بے شمار تجربات بے شمار لوگوں کو ہوتے ہیں آج ہم جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے بے حسی یعنی احساس نہ ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آپ کو وقت دیتے ہیں کہ میں اتنے بجے جاؤں گا اور آپ بیٹھے گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یار ابھی تک آیا نہیں ہے آیا نہیں آیا نہیں ہے اور وہ خراما خراما ٹہلتا ٹہلتا وہ آ رہا ہوتا ہے اور جب کہیں یار آپ تھوڑا احساس تو کرتے یار چلتا ہے سب یار کیا یار آپ اتنے احساس ہو جاتے اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کس کا کتنا وقت ضائع ہو گیا تو کئی لوگوں کو احساس نہیں ہوتا اور اس کو جیسے کہتے یار یہ بے حس قسم کا آدمی یار اس کی فیلنگ ہی نہیں ہے یعنی کہ فیلنگ لیس آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کو کسی کے جذبات کا کسی کے وقت کا کسی کے احساسات کا کسی طرح کی مجبوری کا کوئی اتنا احساس نہیں ہوتا شریعت جو ہماری ہے وہ ہمیں بڑا احساس دیتی ہے جب تم ہانڈیا چڑھاؤ تو سالن زیادہ کر دیا کرو شوربہ زیادہ کر دیا کرو یا پڑوسی کا احساس دلایا جا رہا ہے یہاں تک ہمیں سکھایا سمجھایا گیا ہے کہ پھل کے چھلکے باہر نہ پھینکو اگر پڑوسی کا بچہ دیکھ لے گا تو اس پہ کیا بیتے گی احساس کروایا جاتا ہے کہ آپ فیل کریں کسی کے بارے میں کہ اس کو بھی کچھ ہوگا میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا یعنی دو پڑوس کی آپس کی ڈسکشن میں یہ تھا کہ ایک پڑوسن جو تھی وہ بیوہ تھی وہ بیوہ پڑوسن کسی کام سے اپنے پاس پڑوس والے گھر میں گئی وہ بال بچوں والی تھی شوہر اور ایک اچھی ایک ویل اسٹیبلش فیملی تھی تو جیسے ہی وہ بیوہ عورت گھر میں جا کر بیٹھتی ہے تو اس سے کہا کہ کل آپ لگتا ہے کہیں گئے ہوئے تھے گھر بند تھا آپ کا کہا ہاں کل تو سنڈے تھا نا ان کے ابو ہمیں یہاں لے گئے ان کے ابو ہمیں وہاں لے گئے تو یہ ہوا وہ ہوا ہم نے اتنا وہ کیا اس سے بڑی اپنی کل کی جو تفریحات تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا اب وہ جو عورت جو اس کے ساتھ یہ سن رہی تھی نہ اس کے بچے تھے نہ اس کا شوہر تھا وہ بیوہ عورت تھی لکھا ہے کہ کیا اس عورت کو اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنی چاہیے تھی اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس طرح اپنی کل کی ایک تفریح جو لمحات میں نے گزارے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اگر میں اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہی ہوں تو اس کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا شوہر نہیں ہے میرے بچے نہیں ہیں اس کو ایک الوننس فیل ہوگا ایک سیڈنس صورتحال کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا اداسی گویا کہ اس کے وجود پر طاری ہو جائے گی حالانکہ سیٹ کو گفتگو کی جا سکتی تھی اس کو کوئی نہ کوئی کور کیا جا سکتا تھا جی کل ہم مصروف تھے کہیں گئے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ تاکہ اس کو احساس نہ ہو احساس یہ بس جس کو اللہ پاک نصیب فرمائے اگر ہم گھروں کے اندر بات کریں فیملی میٹر پہ وہاں بھی ایک احساس ایک ڈسکشن ہے مارکیٹ کی بات کریں تو وہاں بھی کچھ احساس نظر آتا ہے اور اگر ہم نوکری کرنے والے لوگ ہیں جاب کرنے والے لوگ ہیں کمپنیز میں کام کرتے ہیں تو بعض اوقات تو احساس ایسا ہوتا ہے کہ خود میری بے حسی مجھے کو نقصان دے رہی ہوتی ہے اور کہیں احساس کی بڑی خوبصورت تصویر بھی نظر آتی ہے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اس طرح کے لوگ بھی رہا کرتے تھے کہ جب کوئی کسی کے پاس سامان خریدنے جاتا اور اس کو کہتا کہ مجھے فلاں فلاں سامان چاہیے تو دکاندار کہتا کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ مجھے میرے پاس ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن میرا یہ جو سامنے والا دکاندار ہے اس کی خریداری ہوئی نہیں ہے اس کی بکری ہوئی نہیں ہے سبحان اللہ اگر آپ اس سے لے لیں گے تو اس کا بھی کام بن جائے گا
کیا بات ماشاءاللہ
یہ احساس تھا اسی طرح ایک بزرگ اپنے دکان پر اپنے بچے کو بٹھا کر گئے اور جب وہ اپنے معمولات سے اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے تو بچے نے بڑے ہی وہ کارنامے والے انداز میں ایک بات بتائی کہ آج میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ کیا کہ ایک شخص آیا تھا اور وہ مجھے جو सिक्का दे रहा था उस वक्त, पुराना सिक्का कोइन जैसे, जो रकम आज आपके नोट ले लें चलें, उसने जो मुझे नोट दी थी ना वो जाली नोट थी, मैंने पकड़ लिए जाली नोट है। मैंने भी इसको जो कहा ना, बस आपको मैं क्या बताऊं क्या कहा, मगर मैं नोट पकड़ लिया, इसको वापस कर दिया। हमको बेवकूफ़ समझता है। हजरत ने कहा बेटा ये तूने क्या किया? तो क्यों? तो बेटा ये हमेशा आता था मुझे जाली नोट देकर चला जाता था, और मैं इसलिए लेता था कि अगर मैं नहीं लूंगा तो ये किसी और को दे देगा।
अल्लाह अकबर।
एहसास, एक बुजुर्ग अले रहमा के घर में चूहे थे, किसने कहा बिल्ली पाल लें, इससे क्या होगा? तो चूहे घर से निकल जाएंगे। तो फरमाया निकल के कहाँ जाएंगे? पड़ोस के घर में जाएंगे ना। तो पड़ोस के घर में चूहे भेजने के लिए मैं अपने घर में बिल्ली पाल लूँ, मेरे घर में चूहे सही हैं, इसको क्या कहेंगे? एहसास।
एहसास
एहसास कुछ लोगों में नहीं होता। रात के 12 बजे इनको फर्नीचर घसीटना याद आता है, चौथी मंजिल पर साहब रह रहे हैं, रात को 12 बजे ख्याल आया कि अलमारी यहाँ से लेकर वहाँ लगा देनी चाहिए, सोफा वहाँ होना चाहिए, बेड का रुख ना बदल दें। अब रात को पूरा घर बैठकर अपना फर्नीचर चेंज कर रहा है, और नीचे तीसरी मंजिल पर रहने वाला कह रहा है भैया तुम्हें सोना है नहीं सोना, हमें सोना है। और वो जो ऊपर शोर हो रहा है, बस हो रहा है, जो उसको रात को 1 बजे तो घड़ी की कील लगाना याद आया है, और वो भी ड्रिल मशीन से लगाना याद आया, रुर करके ड्रिल मशीन चलेगी। अब वो कोई कहेगा भाई मैं अपने घर में कर रहा हूँ ना, ठीक है अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन एक किताब में मैंने पढ़ा था, तुम अपने हाथ के हिलाने में आजाद हो, अपने हाथ के हिलाने में आजाद हो, मगर तुम्हारे हाथ के हिलाने की आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है।
अल्लाह
फ्रीडम विथ लिमिटेशन, आजादी होती है लेकिन अखलाकियात, उर्फ आदत, तौर तरीके, एहसास, ये बहुत खूबसूरत चीजें होती हैं। आज हमारा मौजू कुछ इसी तरह का है कि अगर कहीं हमारी कहीं बेहिसी है, और वो हमारी बेहिसी कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही है, या हमारी बेहिसी हो सकता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो, या माशरती तौर पर इसके अच्छे असरात मुरतब ना हो रहे हो, तो हमें गौर करना चाहिए और अपने अंदर एहसास और फीलिंग को उजागर करना चाहिए। चलते हैं अपने इस्लामी भाइयों की तरफ कि ये एहसास और बेहिसी के ताल्लुक से अपने क्या क्या जज्बात लेकर आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं, इनके जज्बात आप भी सुने, मैं भी सुनता हूँ, और उस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं और अपने अपने तजर्बात शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं बेहिसी के बारे में, एहसास ना होने के बारे में?
भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया बेहिसी के बारे में। ये जो बेहिसी का अंसर है, ये मुझे लगता है कि जिंदगी में, आम जिंदगी में, हर शोबे में इसकी वो ये अंसर मौजूद रहता है। और मुझे ज़ाती हैसियत में ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ तरबियत, कुछ वक्त और हालात जो हैं वो इंसान की बेहिसी और चीज़ों को या तो बेहतर कर देते हैं या बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और क्योंकि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एक नौकरी पेशा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ज़्यादातर काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए या उसको प्रोफेशनली उन चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो हिस शामिल होनी चाहिए। यानी
कौन से
कि
हिस्से?
जो आपके काम करने की जो जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां इदारा आपको देता है, और उस इदारे में जो जिससे आप अपनी उजरत लेते हैं, उस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए मुझे लगता है कि उसमें एहसास का होना बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात है, अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपकी ईमानदारी, आपका काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए वक्त पे आना, काम को प्रोफेशनली समझना, नहीं आता तो उसको सीखना, मतलब वक्त गुजारने से बेहतर ये होता है कि आपकी जो हिस है या आपका जो एहसास है वो आपकी ज़ाती हैसियत में और आपके इदारे के लिए, दोनों सूरतों में उसकी बहुत अहमियत है।
आपकी बात को सेकंड करूं।
जी
एक दफ्तर में 5 बज गए, 5 बजे बस्तर ऑफ हो गया, सारे लोग चले गए,
बिल्कुल
एक साहब आखिर में निकल रहे थे, अब जाके उन्होंने आखिरी लाइट बंद करनी थी।
बिल्कुल ठीक है।
ऐसे में फोन की घंटी बजती है, वो थोड़ी देर फोन को देखता है, घड़ी को देखता है, क्या टाइम पूरा हो चुका है, अब घंटी बज रही है, कहता है हो सकता है कोई जरूरतमंद हो। वो जाकर फोन उठाता है, जब देखता है तो वाकई कोई जरूरतमंद था, और एक बड़ा अहम पैगाम उसने लिखवाना था। अब वो देख रहा है यार कोई कलम नहीं है उसके पास, कहाँ से लिखे ना, या होगा तो नजर नहीं आ रही थी उसको कलम।
बिल्कुल
अब उसने क्या किया, उसने कहा होल्ड कीजिएगा, उसने डस्टबिन खाली किया, डस्टबिन से एक सादा सा कागज निकला छोटा सा, और एक कार्बन पेपर निकला। तो उसने कागज रखा, कागज के ऊपर उसने कार्बन पेपर रखा, और उसमें से एक तिनका मिला, स्टिक माचिस की जैसे के तिनका होता है, उसने वो लिया, कहा जी कहिए, उसने वो लिखना शुरू कर दिया। हटाया तो कागज़ पर, वो वाइट पेपर पर वो लिखा हुआ उसको मिल गया। बयान ये किया गया कि आखिर किस चीज़ ने इसको ये कराया, कि उसका था कि अगर मैं सुन लूँगा वो भूल गया तो, और जिस तक पैगाम पहुँचाना अगर ना पहुँचा सका तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो उसने वो पैगाम लिखा और लिख कर वहाँ रख दिया जिसके लिए पैगाम दिया गया था। ये एहसास था जिसने उसे इस काम के करने पर मजबूर किया। अगर वो एहसास ना होता, उसकी फीलिंग ना होती, तो ना वो फ़ोन ही अटेंड ना करता। फ़ोन अटेंड करके कह देता भाई आप कल फ़ोन कीजिएगा, अभी कोई भी नहीं है दफ्तर में। मगर उसका ये सारी एक्सरसाइज करना ये बताता है कि वो अपने इदारे के लिए मुखलिस था, अपने काम से मुखलिस था और लोगों के लिए मुखलिस था, ताकि किसी का भला हो जाए।
बेशक।
तो मैं क्या आपकी बात को मैं इदाराती तौर पर सेकंड करूं, मुझे एक एग्जांपल याद आ गई थी।
एक एहसास ये है कि आप इदारे के लिए कर रहे हैं, एक आप जाती हैसियत में अगर आप अपने ही अपने इमेज के लिए अगर आप बेहिसी का कोई अंसर अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये एहसास मुझे लगता है कि जिस आदमी के अंदर अगर शऊर का 1% भी मार्जिन मौजूद है, तो वो अपनी जाती हैसियत में अपने आप अपने खुद से बेहिस नहीं हो सकता। अच्छा, या उसको ये इदराक नहीं होता कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। या अच्छा, क्योंकि हर इंसान जो उजरत के लिए काम के लिए बाहर जाता है, किसी इदारे से मुंसलिक होता है, उसके साथ उसके पीछे उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके घर वाले, वो सब उसकी होने वाली तरक्की के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं एक पर्सनल एक आदमी की ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। तो अगर वो उन तमाम चीज़ों को दरगुजर करके उसी बेहिसी के साथ अपने कैरियर को नीचे जा रहा है, मगर उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं
वो घर में तो नहीं बता रहा ना। घर वाले तो ये कह रहे हैं कि तेरे इदारे वाले बेहिस हैं।
सही, वो बिल्कुल आप
घर वाले ये कहेंगे आपके इदारे वाले बेहिस हैं, दिन रात एक कर रहे हो मगर आपका इदारा आपको तरक्की नहीं दे रहा।
नहीं दे रहा।
अब घर वाले फोन करें तो इदारे वाले बताएंगे भैया ये आकर पहले चाय पीता है, फिर अंगड़ाइयाँ लेता है, फिर थोड़ा काम करता है, फिर मोबाइल फोन पर चला जाता है, फिर इसको टॉयलेट जाना होता है, फिर बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि लंच टाइम कब शुरू होगा।
बिल्कुल ऐसा ही है।
फिर 1-1.5 घंटा वो लंच में चला जाता है, उस ब्रेक को भी ये जिस तरह यूटिलाइज करता है, फिर ये घड़ी देखता है कि 5 कब बजेंगे
जी।
तो ये कुछ आगे बढ़ना चाहता ही नहीं है कि इदारा इसको आगे बढ़ाए।
बिल्कुल ऐसा।
तो घर पर जब जाएगा तो बिल्कुल थका हुआ जाएगा, जैसे कि इसी ने सारे इदारे का बोझ उठाया हुआ है। तो ऐसा वो लटका हुआ लेके घर जाता है जैसे कि इदारा यही चला रहा था ना।
हाँ।
और बस सेठ तो घर पे बैठा हुआ है, बाकी लोग सुस्त हैं।
हाँ।
यही एक जना मिस्टर चुस्त हैं। तो और घर में बस यही कहेंगे यार आपकी कोई तरक्की नहीं हो रही, क्या करें, बस एहसास नहीं है लोगों को। हालांकि लोग इसकी चुस्ती का इंतजार कर रहा है इदारा कि ये कब चुस्त हो और कब इदारे को ही अपना समझे और कब अपने काम को ही अपना समझे और ये कोई ऐसे कारनामे अंजाम दे। क्योंकि जब एवरेज काम करेंगे तो आप एवरेज के साथ चलेंगे, जब आप ऑर्डनरी ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आपकी तरक्की भी ऑर्डनरी होगी।
बिल्कुल ऐसे ही।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देनी पड़ती है। ये वर्ल्ड वाइड ये प्रिंसिपल है जो जारी है। आप क्या कहते हैं?
नहीं, मैं एक्चुअल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी शोभा है मेरा, और दावत इस्लामी से मुंसलिक हुए एक तवील अरसा हुआ, तो लोगों में उठना बैठना भी है, तो उस तजुर्बात का मैं इजहार करना चाहूंगा जी साहब। हुजूर,
कोई कहेगा कि हम दावत इस्लामी वाले नहीं है तो हमारा लोगों में उठना बैठना नहीं होगा?
नहीं, जैसे कि लोगों में उठने बैठने के ताल्लुक से कारोबारी आदमी हर तरह के लोगों में बैठता है।
अच्छा, अच्छा,
ऊंचे नीचे लोग, अच्छे बुरे लोग सभी सामने आते हैं जी साहब,
सबको मिलते रहते हैं।
अच्छा हुजूर, ये बेहिसी है ना, ये एक खामोश बीमारी है।
अच्छा,
ये एक ऐसी बीमारी है कि बेहिस को खुद पता नहीं होता कि मैं बेहिस हूं, वो अपने आप को ऐसा साथ रखने वाला समझ रहा होता है, दर हकीकत वो बेहिसी के ऐसे जुमरे में फंसा हुआ होता है कि उसको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर, अब ये बेहिसी कैसे आई? ये बेहिसी भाई साहब अचानक नहीं आ जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। मिसाल के तौर पे इंसान सबसे पहले किसी के दुख को दुख समझने से कासिर होता चला जाता है, उसके बाद दूसरे के मसाइल को वो गैर अहम समझना शुरू कर देता है, इसके बाद एक ऐसा मोड़ आता है जिंदगी का कि वो ये कहता है मुझे क्या परवाह, मेरा क्या ताल्लुक है, मेरे अपने मसाइल हैं, मैं अपनी जिंदगी को संभालूं या इसके मसाइल को देखूं, यानी कि जिंदगी उस कैटेगरी में बेहिसी की वजह से जाके शामिल हो जाता है कि सिर्फ अपने मफादात को अपने सामने रखता है, बाकी अगर उसकी बेहिसी की गिनती की जाए हाजी साहब, तो चाहे वह कारोबारी मामलात में हो, वो आपको बेहिस ही नजर आएगा। उसकी जिंदगी के अंदर आप जाके अगर झांकें तो उसके रिश्तों में उसकी बेहिसी नजर आएगी। इवन ये है कि अगर उसके घर के अंदर बाकायदा उन अफराद को देखा जाए जो उससे बाकायदा मुंसलिक हैं, वहां भी कहीं ना कहीं जाके एक बेहिसी का उंसर नजर आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी पल रही है और वो है बेहिसी की बीमारी, और उसको पता भी नहीं है। अपने जहन के अंदर वो अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं बड़े एहसास करता हूँ। मिसाल के तौर पे वही शख्स अगर किसी बड़े सरमायादार के रूप में मार्केट में नजर आएगा तो उसका तरीका एक कारोबार इस तरह का होगा कि अगर वो फाइनेंसर है, एक बड़ी रकम अपने पास रखता है, सरमाया रखता है, अब उससे मुंसलिक वो लोग जो उसके सरमाए से फायदा उठा के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं हाजी साहब, तो वो शख्स जो सरमायादार है जब किसी चीज के मुनाफा देने की बात आती है या कमजोर आदमी को उसका हक देने की बात आती है तो वहां वो बेहिसी का मुजाहिरा कर,
पहले से मुआहिदा नहीं किया था किसी।
अच्छा, अगर क्या होता है, कमजोर आदमी जो होता है ना वो कहता है कि मुआहिदा करो, लेकिन उससे मुआहिदा क्यों नहीं किया जाता कि ठीक है कर लेंगे।
उसने क्या, क्यों बगैर मुआहिदे?
असल में कमजोर आदमी की चलती नहीं है, जो मेरी मालूमात है।
कमजोर का तो फैसला बाद में होगा ना, पहले तो बात तय करने पर आई है ना।
जी जी जी,
वो तो कमजोर है या नहीं है वो तो बात की बात आ जाएगी।
असल में आई साहब, जो मार्केट में होता क्या है कि मुझे फुला फैक्ट्री से कोई चीज मिल रही है, ठीक है ना, अब उसका मुआहिदा नहीं किया जाता, जबानी कलामी मामला को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, इसको लिखत की तरफ लेके जाने के लिए उसकी बराबरी की बुनियाद पे जब वो शख्स आना चाहता है, लेकिन जो सरमायादार शख्स है वो इतना बेहिस होता है कि वो उसको उस तरफ आने ही नहीं देता।
यहाँ सरमायादार को आप टारगेट करना चाहते हैं या एक ऐसे शख्स को कि जिसको देने की जरूरत है मगर उसको लेने के पास ऑप्शन बहुत हैं?
मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, कारोबारी आदमी, क्योंकि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे बेहिस किस्म के होते हैं जो सामने वाले की परवाह नहीं करते। ऐसे अच्छे लोग भी हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक गालिब अक्सरियत को जो देखा जाता है ना हाजी साहब, वो ये देखा जाता है कि आगे जो ना वो उसके
बेहिसी का ताल्लुक सरमायादार या अमीर या गरीब या सेठ या नौकर से तो आई थिंक इतना ज्यादा अटैच करता नहीं है। क्योंकि अगर हमने किसी को काम दिया है, इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम अगर 100 फैक्ट्री ओनर देख रहे हैं, वो शायद आपसे इत्तेफाक इतना जल्दी ना करें।
सही,
वो कहेंगे यार हमने जिनको भी काम दिया कि यार ये काम करके दे देना, वो कभी छुट्टी कर लेता है? मिसाल के तौर पर हमारे एक साहब ने घर बनाया अपना, नहीं तो नहीं 50 करोड़ से ज्यादा का उनका मकान है।
सही,
राइट, वो अपना मकान बना रहे हैं और मकान बनाते बनाते इनका ये हाल था, कभी फूफी का इंतकाल हो गया, फिर उसकी खाला का इंतकाल हो गया, दूर की एक नानी का इंतकाल हो गया, जब सबका इंतकाल गाँव में हो रहा है, शहर में किसी का नहीं हो रहा।
सही,
ठीक है, अब उसका जो काम जो बिगड़ रहा है ना, उसको वो खुद बंदा बिगड़ रहा है जो प्लम्बर लटका रहा है। तो अब ये 50 करोड़ या इससे ज्यादा का घर बनाने वाला मजलूम बेस या वो लोग जो इससे काम ले रहे हैं और लेते वक्त कह रहे हैं सर मैं आपको ऑफसेट हम आपको दे देंगे, तो असल में दोनों में से बेस कौन है कि वो चला जाता है? आपको तो अंदाजा होगा, आप मार्केट जो खुद फरमा रहे हैं कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, हमारे यहाँ मतलब के लेबर जाती है ईद की छुट्टी पर, कुर्बानी के दिनों में जब चली जाती है, पता नहीं गोश्त हजम हुआ जनाब, एक हफ्ता हो गया मगर जनाब का आने का बारी नहीं आ रही है, वो काम नहीं हो पा रहा होता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका ताल्लुक अमीरी गरीबी से या सेठ या नौकर से नहीं है, इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा नेचर से है। क्योंकि बाद औकात अच्छा फिर यही होता है कि अगर एक छोटा आदमी या एक सप्लायर, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर सप्लायर अगर किसी सेठ को या किसी फैक्ट्री को अपना सामान दे देता है तो वो ले तो लेता, बाद में फिर उसको रुलाता है, उसके चेक बाउंस करवाता है, उसको धक्के खिलाता है, उसको ये खिलाता, तो ऐसा लगता है कि ये अच्छा बादों का सेठ का ऑर्डर अटका हुआ होता है, अटका हुआ होता है और वो अगला छुट्टी पे छुट्टी मार रहा होता है। अरे मैं हिमसेल्फ, चूंकि मैं एक इंडस्ट्रियल फील्ड का आदमी रहा हूँ और मैं रिटेलर रहा हूँ, यानी अगर आपको तो मैंने फर्नीचर का काम किया है, मैंने लेदर का काम किया है, मैंने गारमेंट्स का काम किया है, मैंने कपड़े का काम किया है, मैंने धागे का काम किया है, मैंने डाइंग का काम किया है, अब जो एक मिसाल अब जो बोलो मैंने वो काम किया है।
सही।
मैंने सर्विसेज का काम भी किया है, जिसको अपनी सर्विसेज के जरिए इनकम जनरेट करना। देखिए मैंने ये देखा है कि ये शायद ये जो चीजें हैं ना ये नेचर के साथ चल रही हैं। अब ये अब्बास अमीर आदमी है मगर हर एक का एहसास है, बात गरीब। अब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ एहसास की, आपने जो बात की ना कोविड याद होगा आपको
जी।
कौन भूलेगा कोविड को भैया, कोविड तो कोई भी नहीं भूलेगा, कोरोना कोई नहीं भूलेगा, अपना बेटे का नाम शायद भूल जाएगा लेकिन कोरोना का नाम नहीं भूलेगा भैया, कोरोना ने ऐसा पागल किया हुआ था। कोरोना में लोगों के पास निकलने की गुंजाइश नहीं थी, एक आम गरीब आदमी जो रोज खाता रोज कमाता था रोज खाता था, ना उसका ठेला ना उसकी गाड़ी ना उसकी बिक्री ना उसका सामान ना उसका फ्रूट बिके कुछ भी नहीं हो तो घर के अंदर बंद हो गया निकल ही नहीं सकता। अब उनको सामान पहुंचाने का एहसास किसको पैदा हुआ, उन अमीर लोगों को जो अपनी गाड़ियों की डिग्गी में राशन के बोरे भर भर कर जाया करते थे और मुस्तहकीन में ये अनाज बांटा करते थे।
बेशक
वहां हुआ क्या, वहां यही जरूरतमंद कहलाने वाले लोगों ने अपने भाई अपनी बहन अपने बेटे और अपने घर वालों की लाइन लगवा दी, यानी अगर वो 10 अगर डब्बे देने के लिए आया है तो 10 के 10 अलग अलग नंबर नाम पर एक ही खानदान ने ले लिए, जरूरत पूरे खानदान को एक डब्बे की थी, लिए उन्होंने 10 डब्बे, 9 मार्केट में बेचने चले गए, वरना यही 10 के 10 इन्हीं की जो बिरादरी थी उस पर काम आ जाते हैं, जिसको मैं अमूमन कहता हूँ कि एक वक्त में एक बार नहीं कई वक्त कई दफा ये मैंने वक्त देखा है गरीब गरीब का दुश्मन बन जाता। अब यहाँ बेहिस कौन था, वो गरीब जरूरत ना होने के बावजूद अपने गरीब भाइयों का हक खा रहा है, यानी हक पर डाका मार रहा है, या फिर वो अमीर के जो ऐसे हालात में कि जहां पर एक अमीर आदमी अपनी रकम को तोड़कर लोगों को मदद देने के लिए आया है, यानी यूं समझिएगा कि उसने 10 लाख रुपए का राशन खरीदा जेब से कि मैं गरीबों में मुफ्त बांटूंगा, जिससे खरीदा वो भी पैसे वाला, उसने वो राशन उसको डिस्काउंट पे देने के बजाय मुंह मांगे दामों में दे दिया। कौन बेहिस्स है, कौन एहसास वाला है, कौन हमदर्दी कर रहा था और कौन हमदर्दी का खून कर रहा था? तो लगता यह है कि यहां मतलब कि शायद ही बेहिसी या ये महसूसात या जिम्मेदारी ये शायद ये कोई अमीरी गरीबी से कंसर्न शायद नहीं करती, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा ना इसका ताल्लुक बड़ा तरबियत से है, इसका ताल्लुक बड़ा तरबियत से है, इसका ताल्लुक बड़ी एजुकेशन से है, और अगर उसको इसकी अच्छी तरबियत हुई हुई है तो वो अमीर होकर भी, यानी आप देखिए बड़े बड़े अस्पताल चलाने वाले जो डोनेशन दे रहे होते हैं वो गरीब आदमी तो नहीं होता, इलाज तो गरीब का हो रहा होता, वहां तो अमीर आदमी का तो इलाज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये ऐसा लगता है कि ये तकसीम है, और अच्छा वहीं पर उसी हॉस्पिटल के अंदर एक पैसे वाला आदमी किसी मतलब के भले वो डॉक्टर ही क्यों ना हो वो किसी गरीब का गलत इलाज करके यानी कि गैर जरूरी इलाज करके उसे पैसे कमा रहा होता है, यानी एक यूं कर रहा होता है एक यूं कर रहा होता है, ऐसी रंग बिरंगे अंदाज है, इतनी नित नई सारे अंदाज है, डिसीजन मुश्किल हो जाता है कि मतलब के एहसास वाला कौन बगैर एहसास वाला कौन, और जिम्मेदारी किस कौन निभा रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी का खून कर रहा है। तो यूं मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना तजिया अर्ज किया,
आपके
मेरे अपने को तजर्बात है वो मैंने शेयर किए।
इसी तरह मैं अब बात को आगे बढ़ा रहा था,
बढ़ाए
कि मिसाल के तौर पे अब वो सरमायादार या जो शख्स कारोबार में बैठा है, इसमें ये नहीं कि सभी बुरे होते, हम उन लोगों की गुफ्तगू कर रहे हैं जिनके अंदर एहसास नहीं होता, यानी कि मार्केट है दुनिया है हर तरह के, जैसे अभी आपने फरमाया कि उसी हॉस्पिटल के अंदर उस चीज का इजाफा करके उससे ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, कोविड के जो लोग ने परचेजिंग करी जिन लोगों ने उनको महंगा सामान देके उनको जो है वो डिसाइड किया जा रहा है, लेने देने दोनों तरफ। तो यहाँ पर भी जैसे मैं बात को आगे चलाता तो हक मारने वाले की कैटेगरी दोनों तरफ ही होती है, यानी कि एक तरफ नहीं होती दोनों तरफ ही होती है, जैसे कि एक तरफ उसको उसका हक नहीं दिया गया उसको हक को रोका गया। हम इसी तरह अगर हम जाते हैं इंटीरियर की तरफ जमींदारी के शोबे के अंदर, वो किसान वो जो सारा दिन मेहनत करता है उसको उसकी खाद, उसके ट्यूबवेल के पैसे, तमाम तर चीज़ें जो उसको दी जा रही होती हैं, वो मेहनत करके जब फसल को ले लेती नज़र आती है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, अच्छा भी होता है लेकिन बुरा भी होता है, उसके हक को मारा भी जाता है,
उसको उसके मेहनत की प्रॉपर मजदूरी नहीं,
प्रॉपर मजदूरी क्यों, वो सारी जिंदगी उसी मकरूजी में काटते काटते उसकी अगली नस्ल आती है और वो भी वहीं खड़ी भी होती है।
आप क्या कहते हैं?
मैंने बेईसी को बस इस स्टाइल में देखा है कि
अच्छा बेईसी का भी आपने स्टाइल देखा है।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अलग नौयत में आपको बयान करने जा रहा हूँ, बिल्कुल अलग नौयत है। अब तक हमने जो बातें की हैं इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है ये पैटर्न। मतलब क्या कोई औलाद ऐसा कर सकती है कि अपनी माँ को 27 साल के लिए हॉस्पिटल में छोड़कर चली जाए?
ओ
नामुमकिन सी बात है। लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा है कि एक बूढ़ी अम्मा जिनकी उम्र 60 साल की थी, उनको एक मर्ज हुआ जिसको डायमेंशिया कहते हैं, जो कि अक्सर बुजुर्गों को हो भी जाता है। अब बेटे चूंकि उनकी नौकरियां अमेरिका में थी, वो अपनी माँ के पास आते रहते थे, जाते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी माँ इस कंडीशन में आ गई, क्या अब इसको हम अपने साथ सर्वाइव नहीं करा सकते, उन्होंने उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया और वो चारों के चारों अमेरिका चले गए। अब अमेरिका जाने के बाद उन्होंने सिर्फ एक काम ये किया कि अपनी माँ को याद तो जरूर रखा, लेकिन देखने कभी भी नहीं आए जिंदगी में। 27 साल का अरसा उन अम्मा का उस हॉस्पिटल के अंदर गुजरा और 27 साल के अंदर उन अम्मा का उस हॉस्पिटल में लेवल ये हो गया कि हॉस्पिटल का हर बंदा, स्वीपर, डॉक्टर, असिस्टेंट, जो भी लोग हैं वो सब उनको अम्मा कहने लगे। मतलब उनका एक घरेलू रिश्ता हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनकी अपनी औलाद जो इनकी वाकई में पैदा करता थी वो उन्हें देखने के लिए नहीं आई दोबारा पलट कर।
खर्चा भिजवा देती होगी बस,
खर्चा हर महीने बिल्कुल बिला,
मगर खुद नहीं आते थे,
खुद नहीं आते वो। तो बेसिक एक लेवल ये भी है कि अपनी माँ को ही छोड़ दिया जिसने कितनी मुसीबतें उठाई।
वहां पर एक बात याद आ गई
जी,
आज एक बात हो रही थी मेरी, एक साहब ने कहा कि यार मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मैं कहीं जा नहीं सकता। आपकी माँ को आपकी जरूरत है कि आपको आपकी माँ की जरूरत है? और वो मेरा मुंह देख रहा था, मैं कहा आपको आपकी माँ की जरूरत है, माँ गई ना नुकसान आपका होगा, जरूरत आपकी, वो आपकी दुआ का दरवाजा है, आप इसकी दुआ का दरवाजा नहीं हो, वो इस वक्त आपकी ढाल बनी हुई, आप उसकी ढाल नहीं हो, वो आपकी छत बनी हुई, अभी आप उसकी छत नहीं हो, वो आपके लिए बलाएं टालने वाली एक मजबूत दुआओं का एक रास्ता बना हुआ है, आप अभी उसके लिए नहीं हो। और यूं चंद एक बातें बयान हुई, मैंने कहा किसको किसकी जरूरत है, बोला है मुझे मेरी माँ की जरूरत है। तो अब मैं इस पर दोबारा गौर करता रहा, बात खत्म हो गई, चले गए, मुझे ऐसा लगा कि माँ या बाप एक खजाने की तरह है ना, बूढ़े माँ बाप, ये मैं तस्वर कर रहा था ना, इमेजिनेशन। इस गुफ्तगु के बाद, ये बात असर व मगरिब के दरमियान की थी, नमाज मगरिब वगैरह से फारिग होने के बाद, मैं उस पूरी गुफ्तगु को एक इमेजिनेशन की तरफ लेके जा रहा था कि ये गुफ्तगु हुई क्या थी। मुझे ऐसा तस्वर आ रहा था कि माँ बाप एक खजाने की तरह हैं जो आहिस्ता 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 जमीन के अंदर जा रहे हैं, और औलाद देख रही है कि मेरे माँ बाप किसी वक्त भी मेरी आंखों से उजल हो जाएंगे, वो जितना हो सके इस खजाने से अपने लिए जमा कर ले, जितना हो सके खजाना जमा कर, जितना हो सके अपने लिए, यानी ये खजाने से क्या मुराद है, जन्नत का रास्ता, यही तेरी जन्नत है, यही तेरी दोजख है, यही और ये हैं, वो बिल वालिदैन एहसाना, भलाई करे माँ बाप के साथ, इससे कबल के ये जमीन के अंदर जाकर तेरी आंखों से उजल हो जाए, तू कुछ ना ले सके, तो जब तक ये तेरे सामने तो ले ले। अब खजाने को मेरी जरूरत है क्या मुझे खजाने की जरूरत है? तो मैं इस पर गौर करता रहा और मैं सोच रहा था कभी मौका मिले तो बात बयान मैं कर दूं। तो आज आपने 27 साल एक मजलूम माँ का वाकया बयान किया तो मुझे ये बात याद आ गई कि औलाद समझती है कि माँ बाप को हमारी जरूरत है, वो एक अलग है, वो ये फ्रेज या ये गुफ्तगु गलत नहीं है, ये जुमला गलत नहीं है, मैं जुमले को गलत नहीं, मैं इस जुमले की एक और जहत बयान कर रहा हूँ।
बिल्कुल सही
कि जहाँ आप ये कहें कि हमारे माँ बाप को, हमारे बिल्कुल माँ बाप को आपकी जरूरत होती है, और हकीकत ये कि माँ बाप मेरी जरूरत है, माँ बाप में वो नहीं है तो मैं खत्म हो जाऊंगा, यानी कि अगर बेटा चला गया दुनिया से तो बाप क्या, बाप के ऊपर क्या टाइटल लगेगा, लेकिन अगर बाप चला गया तो बेटे पर एक टाइटल लगेगा, और बालिग नहीं कि ये यतीम हो गया, बाप यतीम नहीं होता, यतीम बेटा होता है, औलाद यतीम हो जाती है। तो ये जो जिन्होंने कहा, अगर ये बात कहीं आपको दिल को लगती हो, कोई चोट लगती हो, और अल्लाह ना करे आप अपने माँ बाप को कहीं भूल के बैठे हुए हैं, तो मेहरबानी करें जाइए इससे पहले कि ये दरवाज़ा बंद हो जाए। इस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो जाइए, यहाँ जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, यहाँ बहुत राहत मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, इससे पहले कि ये रास्ता बंद हो जाए, ये दरवाज़ा बंद हो जाए। आप कंटिन्यू करें प्लीज़।
मैं इसी के साथ आपको एक वाकया और बयान करूंगा कि एक खातून मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी मैंने देखा, उनको गुजरी है कि उन्होंने शादी इस वजह से नहीं की कि मेरे भाई के 4 बच्चे हैं और मेरी भाभी का इंतकाल हो गया है, तो मेरे भाई के बच्चे कहीं ये ऐसा ना हो कि ये परेशान हो या ख़राब हो जाएं, किसी ऐसी डगर पर चल जाएँ कि ख़राब हो जाएँ। तो उन्होंने अपने भाई के बच्चों को पालने का एक तहैया कर लिया कि जी मैंने अब इन्हीं की कफालत करनी है और मैं खुद शादी नहीं करूँगी। चलता रहा, कंटिन्यू मामला चलता रहा, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बच्चे मतलब इस काबिल हो गए कि कोई बैंक मैनेजर लग गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, और इस दौरान उनके भाई का भी इंतकाल हो गया, भाई भी गुजर गए। तो अब वो सारी प्रॉपर्टी जो थी वो फुप्पो जान थी उनके हाथ में आ गई। जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने भी भतीजों ने उनका टेक केयर करने के बजाय उनको वही हॉस्पिटल की नज़र किया, वो हॉस्पिटल में उनको जमा कराया। आज ये कंडीशन है कि वो उस सारी जायदाद में सब आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उम्रे पे भी जा रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, सारे मामला हो रहे हैं, लेकिन वो फुप्पो बेचारी हॉस्पिटल के अंदर है, उनको देखने के लिए कोई भी नहीं जा रहा, उनको देखने का टाइम किसी के पास भी नहीं है।
अच्छा, ये भी एक पहलू है
इसका।
अच्छा, इसमें मैं जैसे अभी मैंने इनकी पहली स्टोरी के बाद कुछ बात बयान की, अब ये सेकंड स्टोरी इनकी आई है। यहाँ मैं अब बच्चों से नहीं, मैं बड़ों से बात करता हूँ। हर एक के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, कई आपको बच्चे और कई ऐसे फैमिली के मेंबर मिलेंगे जिन्होंने बड़ा टेक केयर किया हुआ होता है और बड़ा संभाल कर रखा हुआ होता है अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपने मोहसिन को। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कहीं हमारी कोई ऐसी भूल हो रही होती है कि सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। दादा, मेरे सुन्नत कई दफ़ा इर्शाद फरमाते हैं कि घर में किससे रहना चाहिए, बड़े बूढ़ों को किस अंदाज से रहना चाहिए, आपकी गुफ्तगू कैसी हो, आपकी मुदाखलत हो या ना हो, अगर इसलाह करना चाहते तो कैसे करें, वगैरह वगैरह। तो मेरा इसमें मशवरा ये है कि हमारे जितने भी बड़े बड़ी उम्र के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो खवातीन हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, मेरा ख्याल इसको गौर करना चाहिए कि कोई हमारा ऐसा रवैया या हमारा ऐसा अंदाज तो नहीं है जिसकी वजह से इनके दिलों में हमारे लिए वो अकीदत, मोहब्बत, प्यार, एहसास ना रहा हो। कि बाद वक़्त मोमबत्ती बुझती नहीं, हम फूंक मार के बुझा देते हैं और अंधेरे में खुद ही आ जाते हैं,
खुद ही आ जाते
हैं। तो कहीं हम ही नहीं तो कोई ऐसी हरकत की फूंक नहीं मारी जिससे ये उम्मीदों का जो चराग था वो बुझ गया और अंधेरे में हम ही आ गए। ये एक सवालिया निशान है, इसको गौर कीजिएगा।
ऐसा जैसे बेहिसी करने वाला शख्स दर हकीकत अपने साथ ही जुल्म कर रहा होता है ना, एक वक्त आता है कि तन्हा भी से रह जाता होगा ना।
मैं थोड़ा सा आपकी तमाम गुफ्तगू के बाद मैं यूं गौर कर रहा था कि क्या हर कोई बेहिसी है जो काम नहीं आता। भाई काम ना आना बाज़ोकात आदमी की बस में नहीं होता कि मैं काम आऊं, हाँ भाई यार इसमें एहसास ही नहीं है, या वो ऐसा मजबूर हो जाता है। जैसे रास्ते में कोई मरीज एक्सीडेंट हो गया, अब कोई जा रहा है, हम बोले यार किसी को एहसास ही नहीं है। हो सकता है कि जाने वाले को एहसास हो, मगर उसको इस बात का भी एहसास होगा अगर मैं उसको लेकर गया
तो मुझे पुलिस,
तो जो मेरा हाल होगा ना, तो मेरा कोई एहसास करने वाला कोई भी नहीं हो।
हुजूर, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद
कुछ सिस्टम का भी प्रॉब्लम है।
जी जी, बिल्कुल ऐसा ही।
यानी वो हम गए यार ये लोगों को एहसास ही कोई नहीं है, वो वाकई नहीं होता,
बिल्कुल ऐसे।
मगर कुछ रूल्स भी है। यानी मैं टर्की में था, इस्तांबुल में। अब इस्तांबुल में हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में किसी का हादसा हो गया तो मरीज सड़क पर है, तो पब्लिक खड़ी है। मैं कहे मैं जाऊं तो मुझे मना किया कि आप मत जाइए, यहाँ रूल ही नहीं है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ और जिनका आपस में हुआ है ना, अगर आप बीच में चले गए तो पुलिस आप पर कोई मुकदमा करेगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने आकर देखना है कि असल में मैटर क्या था। आपको बॉडी हटा नहीं सकते, सामान हटा नहीं सकते, गाड़ी हटा नहीं सकते, उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन सारी, वो फिर वो अजीब वो गरीब बात है कि मैं वहाँ तो बेचैन था, मगर वो आने में देर नहीं लगी, वो इमीडिएट वहाँ एक था और फौरन वो मैं जो सब हम सोचते रह गए और कानून हरकत में आ चुका था। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अब क्या पता अब कोई मुझे ही देकर कह रहा हो कि अरे बेस किस्म का मौलाना खड़ा हुआ, उसको एहसास ही कोई नहीं है यार। मगर वो तो वो एहसास कर रहा था कि नहीं कर रहा था, वो सोच रहा था नहीं सो रहा था, उसको पता।
असल में ऐसे ही लोग होते हैं।
कैसे लोग होते हैं
जो बेहिसी के जुमरे में जाते हैं, वो सामने वाले हर इंसान को बेहिसी समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि हर इंसान ही बेहिस है, जैसे आपने इस बात को कंटिन्यू किया कि एक मजबूरी भी तो होती होगी ना, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन
मजबूरी और बेहिसी के फर्क को समझने की जरूरत है की बात अगर पूरी हो जाए।
बेहिसी में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि बेहिसी जो है, मोबाइल ने भी कुछ हमें बेहिस कर दिया।
अच्छा,
अगर कुछ मामला रोड पे
आजकल तो एक मोबाइल ही रह गया बेचारा, जिसके पास कोई भी नहीं है, उसको सारा इतना मोबाइल पर ही निकालना है, मोबाइल ने क्या बोलना है हमें।
मतलब लोगों की कोशिश पहले ये होती है कि मैं उस मरीज को उठाऊं या कुछ करूं, पहले उसकी वीडियो बना के वायरल।
मोबाइल का क्या कसूर है?
लोगों की बेहिसी का कसूर है बस।
किसका?
लोगों की बेहिसी का।
मोबाइल का क्या कसूर?
मोबाइल उसकी जेब में ना,
हाले
मजबूर कर रहे हैं बेहिसी करने पर।
भाई यही यही मोबाइल निकाल के किसी ने फोन किया होगा।
हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल पर डिपेंड करता है,
इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। हाँ,
वो मोबाइल वो एहसास वाला था,
लेकिन ज्यादातर
मोबाइल बेहिस था।
ज्यादातर बेहिस लोग उसको इस्तेमाल करते हैं,
लोग के मोबाइल
लोग।
मैं यही बताना चाहता था कि हुकुम इक्विपमेंट पे नहीं लगता, हुकुम इक्विपमेंट के यूजर पर,
यूजर पे लगता है। बिल्कुल,
हम लोग मोबाइल की ही दुर्घट बना रहे हैं। अब इसके पास अमान वमान तो है नहीं मोबाइल पर, ठीक है, और जो है तो ये तो यूजर पर डिपेंड करता है ना। हमारे एक इस्लामी भाई का एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी सर पर, हेलमेट था, किसी हद तक बचत हो गई, लेकिन हेलमेट भी गिर गया और उनके घर सर पर चोट लगी, ठीक ठाक, वो बेहोश हो गए। अब एक साहब पहुंचे, इनके जेब से निकाला मोबाइल, एक आदमी होता मोबाइल लेकर चला जाता, एक आदमी ये था जिसने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालकर उसने उसमें से लास्ट कॉल जिसको की गई थी ना उसको डायल कर दिया, उसने रिकॉल किया, यूं समझिए आप। अब उसने इत्तिफाक दी कि उसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं था,
अल्लाह,
राइट, पासवर्ड होता तो भी पासवर्ड होता
भी नहीं हो सकता था,
ठीक है। उस शख्स की अक्लमंदी देखिए कि उसने मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के सिर्फ उसने रिकॉल किए,
लास्ट डायल,
लास्ट डायल को उसने कॉल कर दिया, और उसने जब कॉल के सामने से कॉल उठी, क्या भाई आप कौन है? बोला आप कौन हो? बोला ये किनका मोबाइल है? बोला ये जिसका मोबाइल है ना, ये यहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये यहाँ है,
अल्लाह,
आप आके इनको फौरन इमीडिएट अस्पताल पहुंचाइए। फिर वो पहुंचे और इमीडिएट, अब ये एक शख्स ने मोबाइल उठाकर या तो चला जाता कि चल भैया ये तो बेहोश है, और एक ने मोबाइल उठा के ये किया, ठीक है। तो मामला मोबाइल का नहीं है, मामला है हमारा अपना, कि हमारे अंदर वही जो बात, हमारे अंदर एहसास, अब ये उसका एहसास था
हमारे माशरे का,
मतलब यही इसी माशरे में, इसी कराची में की बात कर रहा हूँ भैया, जहां से ये लोग यूं जा रहे थे, तो शहर का भी नहीं है मसला, मसला तो वही आपकी अपनी घर में तरबियत कैसे हुई है।
बिल्कुल ऐसा,
आपके वालिद साहब को अगर आपने किसी के साथ गमखारी करते देखा है ना, तो थोड़े दिनों तो उस वक्त आप कह सकते हैं अबू खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा आपको भी अल्लाह ने चाहे तो सखावत मिल जाएगी।
बिल्कुल ऐसा,
तो लेगेसी बाजों का बंदा लेकर चल रहा होता है अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की। अगर फैमिली में ये गुफ्तगू जारी है, जैसा कि आप तीनों की गुफ्तगू का एक नतीजा है कि यार अपनी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है,
बिल्कुल,
तो बच्चा भी शायद ये सीख जाएगा कि अपनी सेहत पर
कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा हुजूर, एक मेरा इसमें एक सवाल ये था कि क्या आपका जो माशरा है या जो आपका जो सराउंडिंग में लोग हैं, वो आपकी तरबियत के लिए कितना, मतलब होता ना कि आप जिस, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप जिस माहौल में रहते हैं ना आप वैसे ही हो जाते हैं, यानी कि आप जिस माशरे में रहते हैं, जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, तो या तो वो माशरा या वो तरबियत का सबब बनता है।
हम ज्यादा तो अपने घर में रहते हैं ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक बच्चा टिफिन में खाना लेकर स्कूल जाता है,
बिल्कुल ऐसे
जब मदरसे जाता है, खाना बच्चे की मिल्क नहीं है और पता है कि भाई जो भी ये खाए, अब वो टिफिन में से बच्चा किसी को खिला देता है और उसके टिफिन से खा लेता है, तो माँ कहती है खबरदार किसी को खिला दो, हाथ नहीं लगाने दिया कर। एक बच्चा कहता अम्मी वो फना था ना, उसके बाद टिफिन ही था, मैंने उसको खिला दिया था, तो माँ कहती बेटा बहुत अच्छा काम किया। अब इस बच्चे की तरबियत एहसास होने और एहसास के ना होने की किसने की?
माँ ने की,
माँ ने। अब वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो अपने हिस्से से दूसरों को हिस्सा देगा, और दूसरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा बोले खबरदार मेरे टिफिन पर या मेरे चीज पर हाथ रखा दो,
किसी को भी नहीं देगा,
किसी को भी नहीं देगा, क्योंकि उसकी तरबियत शुरू से उसकी वालदा ने इस तरह की।
बिल्कुल ऐसा ही,
तो ये डिपेंड तो बहुत करता है उस तरबियत पर।
हाँ,
और ये घर से,
इसमें दो पहलू भी हैं। देखें, ये तो बुनियादी तरबियत जो अपने घर से लेते हैं आप, उसके बाद बाज दफा ये होता है कि कुछ लोग जो है वो वक्त और हालात के साथ अपने आप को उनके अंदर मॉडिफाई करने की एक करज होती है, या उनको लगता है कि हाँ मैं जिंदगी में बहुत सारी चीजों में चेंज ला सकता हूँ, और वो चेंज जो है वो उसको जब वो अपने घर से बाहर निकलता है, माशरे में जाता है, लोगों से मिलता है, 10,000 किस्म के लोग उसको मिलते हैं रोजाना जिनसे उसका इंट्रैक्शन होता है, तो वो जो तरबियत घरेलू और माशरे के साथ रहने में, जैसे अभी एक हादसे का जिक्र हुआ था, जैसे अभी कुछ हालिया दिनों में इस शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चों के गटर में गिरने के इस किस्म के वाकयात हुए हैं, तो जो सिस्टम की बेहिसी है जिसकी वजह से हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, रॉन्ग तरफ जाना, गटर के ढक्कन नहीं है, लोगों का गिर जाना, उसमें ओवरऑल सिस्टम की बेहिसी, लोगों का अपने जात को मॉडिफाई ना करना या उस चीज को समझ के अपने आप को बदल ना जाना।
कान पर गन रख के कहा था कि खबरदार अगर तूने कोई तमीज से सड़क पार की, तुझे इतना मारेंगे, हम इतना मारेंगे, रोड पर मुर्गा बनाएंगे अगर तूने सही सड़क पार की हो।
बिल्कुल ऐसे ही है।
तू बस उछलते कूदते हुए और घूमते फिरते हुए सड़क पार कर, वरना तुझे चितर पड़ेंगे। कभी सिस्टम ने किया है?
कभी भी नहीं किया।
ठीक है, क्या सिस्टम ये कह रहा है गटर का ढकना चोरी कर, अगर आज के बाद मुझे यहाँ गटर का ढकना नजर आया जो हमने लगाया है, तो फिर देख तेरा मेले में रहना मुश्किल कर देंगे। कभी गटर का ढकना चोरी करवाया?
नहीं,
नहीं करवाया। हम हर चीज में नहीं कहता सिस्टम सही होता है या सिस्टम गलत होता है या सिस्टम क्या, मैं सिस्टम पर डिबेट नहीं कर रहा। सिस्टम पर डिबेट करो तो मेरे लिए डिस्कशन बिल्कुल मौजूद है,
बिल्कुल मौजूद।
बट आई एम नॉट अ सिस्टम, आई एम इंडिविजुअल पर्सन, और कुछ मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका ताल्लुक सिस्टम से मैटर ही नहीं करता। वो मतलब कि वो मेरा काम था। मिसाल के तौर पर बारिश होती है, पानी भर जाता है, एक आदमी देखता है वो स्कूटर गई और करके गटर पे गई और उछल के निकल गई।
सही,
वो देखता है यार ढक्कन तक नहीं लगा था, अजीब लोग है, वो स्टार्ट करके निकल जाता है।
बिल्कुल ऐसे ही।
हालांकि उसको भी झटका लगा इतना जबरदस्त, मगर वो झटका खाकर भी उसको कोई झटका नहीं लगा। फुटपाथ पर एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा है, यार ये बच गया, यार अल्लाह ने इसको बचा लिया, उसको कोई झटका नहीं लगा जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ है। राइट,
बिल्कुल ऐसे।
मगर उस झटका असल उसको लगा जो फुटपाथ पर खड़ा हुआ है। वो वहां से डंडा ढूंढता है,
हाँ।
वो डंडा ले, उसके पास कुछ भी नहीं है ना, गटर का ढक्कन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो डंडा निकालता है, यार डंडा कहाँ है यार, कुछ डंडा नजर आ रहा, डंडा उठाया, डंडा उठाकर उसे गटर के अंदर डाल दिया और एक सिग्नल दे दिया कि भैया इधर से नहीं निकलना, यहाँ गटर का ढक्कन खुली हुई है।
बिल्कुल ऐसे ही है।
हालांकि झटका भी उस मोटरसाइकिल वाले को लगा था और वो बुड़बुड़ करता हुआ निकल गया। हालांकि उसको चाहिए था कि दो मिनट के लिए मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करता, वो कहता है जो मेरे साथ वो किसी और के साथ ना हो।
बिल्कुल ऐसे ही है।
ये अलग है, ये हम है, ये हम हैं जो हमारी तकसीम है।
बिल्कुल ऐसे ही है।
हम ही लोग हैं यार जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, जिसने जो निकल गया, जो चोरी करके ढक्कन लिया वो भी इसी शहर का था, जिसकी जिम्मेदारी थी ढक्कन लगाना उसे ढक्कन नहीं लगाए वो भी इसी शहर का था।
बिल्कुल ऐसे ही है।
जिसको झटका लगा वो भी इसी शहर का था, जिसने डंडा लगाया
वो भी
इसी शहर का था। तो शहर क्या बोलता है यार, शहर क्या बोलता है, एनवायरमेंट क्या बोलता है, माहौल और बारिश क्या बोलती है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन में खुद देखूं कि मैंने कहाँ कहाँ केले का छिलका देकर उसको हटा दिया, मैंने कहा पत्थर देकर उसको, पत्थर की ठोकर लगी, अबे यार कोई तमीज ही नहीं है लोगों की, रास्ते में पत्थर लगा दिया यार, को पत्थर तो साइड में कर देते, ये कहकर भी अगला पत्थर साइड में नहीं कर रहा। वो केले पर स्लिप हो गया और लगी है ना उसकी, जैसी तैसी लगी ना, अब वो जो माहौल होता है भी, जो बोलना उसको बोलना है, कैसे जाहिल किस्म के लोग है, केले का छिलका सड़क पर लग दिया, वो मलता हुआ घिसता हुआ आगे निकल गया, इतनी तौफीक नहीं कि केले का छिलका उठा कर रख दे, बोला नहीं कोई और निकलेगा उसको लगेगा तो पता चलेगा। वो बोलते जिसने छिलका फेंका है उसको थोड़ी पता चलेगा, वो तो फेंक कर चला गया ना, उसे थोड़ी दोबारा यहां से गुजरना है। अब ये जो हम लोग जो है, ये हम है, और इसमें कौन हमें ये कहता है कि तुम ये करो या तुम ये नहीं करो। मैं समझता हूँ कि हमारी तरबियत की बहुत ज़रूरत है, हमारे स्कूल में, हमारी कॉलेज में, हमारे घर में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे तमाम तालीमी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारे फैमिली और हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर, ये जो चीज़ें हैं ना जो हमें बेहिस कर देती हैं, सिर्फ कमेंट पास करते हैं हम, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। मैं मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें क्रिटिसाइज के लिए वो मतलब वो क्वालिफाई कर गई हैं कि इसको क्रिटिसाइज किया जाए, डेफिनेटली क्वालिफाई करती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर इससे करने से कुछ नहीं होता। मैं किताब में पढ़ रहा था कि अंधेरे को मत कोसो, अपने चराग को दुरुस्त कर लो।
बिल्कुल ऐसे,
अगर कमरे में अंधेरा है तो इसका इलाज अंधेरे को कोसने से कभी भी अंधेरा वापस नहीं आ जाएगा।
ऐसा ही है।
बात है कि हमें रोशनी करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें अपने सिविक्स, इसको कहते हैं सिविक्स मैनर्स, सिविक्स सेंस, आप कैसे सोशलाइज होना चाहते हैं, आप कैसे मतलब के लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं। वरना यकीन माने ये बहुत अजीब व गरीब सा माहौल सा बन गया है। और बात ये है कि मतलब 10 लोग इसी तरह गुजर जाते हैं, कोई एक आध खुदा का बंदा ऐसा आ जाता है कि जो अपनी शहरी और अपनी उस वक्त की जिम्मेदारी को पूरा करता हुआ हमें नजर आता है, यकीन माने इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा हो जाए कि सिर्फ मूवी बनाकर वीडियो वायरल कर देना मेरा काम नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, मैं हाथ कुछ कर सकता हूँ तो अपने हाथों से दुरुस्ती क्यों ना कर लूँ यार, ना जाने मतलब ये मौका कोई और क्यों ले जाए, ये नेकी का ये सवाब का मौका मुझे क्यों ना मिले कि मैं भी मतलब कि क्योंकि ये शाख हटा देना, ये लोगों की रुकावटों को दूर कर देना, तकलीफों को दूर कर देना, ये सब सवाब के काम है। अब ये दावत इस्लामी का जो मकतदुल मदीना की किताब है, तकलीफ ना दीजिए, अब ये पढ़कर तो देखें, ये पढ़ने वाला आदमी अगर बेहिस होगा तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर एहसास पैदा हो जाएगा। जी अब आप कुछ कहिए।
असल मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपके गुफ्तगू का, मेरी गुफ्तगू का, हम सबके गुफ्तगू का लुबी लुबाब ये है कि हमें अपने अंदर एहसास पैदा करना चाहिए, पर्सनल होकर अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे अपनी लाइफ कैसी गुजारनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई मुसीबत ज़दा, मैं उस तक पहुँचूँ अपनी ताकत के हिसाब से। मिसाल के तौर पे मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे अपने मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अपने मसाइल में रह कर उनको भी हल किया जाए और अपने कुराबतदार, अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले, उन तक भी इंसान अगर पहुंचने की कोशिश करे तो पहुंच सकता है, उनके मसाइल को हल कर सकता है। मिसाल के तौर पे इंसान अपने साथ क्या नाइंसाफी कर रहा है, वो ये कर रहा है कि उससे इसका नहीं पता कि मैं आया क्यों हूँ, नमाजों से दूर है, दीन से दूर है। सबसे पहले वो एक रात तलाश करे जिस रात में वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो अल्लाह को राजी करने के लिए। इसके बाद कोई आगे बढ़े, कोई ऐसा दुखियारा हो, कोई यतीम हो, कोई परेशान हाल हो, उसके आंसू पूछे जाके उसके काम आ जाए, उसके दिल से दुआ निकलेगी। एक काश के ऐसा मौका आए कि कोई दुखियारी माँ हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ करे कि जा बेटा अल्लाह तेरा भला करे, कोई ऐसा बूढ़ा शख्स कि जिसका हम सहारा बने वो हमारे लिए हाथ उठा के दुआ करे कि बेटा अल्लाह तेरा बेड़ा पार करे। इन दुआओं की हमें ज़रूरत है, इसके लिए हमें अपने अंदर एहसास पैदा करना होगा, इस सिस्टम को नहीं बल्कि अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह हम जो ना वो आंखों के तारा बनेंगे। भाई साहब मैं आपसे अर्ज करूँ कि वो भी तो जैसे आपने भी फरमाया, मैं उस बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ, ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनसे सब मोहब्बत करते हैं, क्यों, वो सबका ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों में उनको याद किया जाता है, कारोबारी हलके में उनको याद किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है, वो मौके पर पहुंचकर लोगों का काम हल करते हैं अपनी ताकत के हिसाब से, उनकी सुनते हैं, उनकी सुन के उनको ढारस दी जाती है। अच्छा पैसा देना हल थोड़ी है कोई, भाई साहब किसी के दुख को बांटना भी, उनकी तकलीफों को बांटना भी।
2025 के किसी महीने में मैंने एक रिपोर्ट ली थी, दावत इस्लामी का जो शोभा है कफन दफन, उनकी मेरे पर रिपोर्ट आई थी कि एक साल में तकरीबन 12,000 लोगों को उन्होंने गुस्ले मैयत दिया है।
अल्लाह अकबर।
मैं पढ़ता रह गया, मैंने कहा 12,000 मतलब महीने की 1,000 की एवरेज आ गई यार, 1,000-1,200 लोगों को कफन दफन देना। अच्छा मौत का वक्त तो पता ही किसी को नहीं है, रात के 3 बजे फोन आएगा, भाई हमारा अजीज इंतकाल करके आइए, फजर में फोन आएगा, कभी काम पर फोन आ जाएगा। और इसके मतलब कह सकते हैं कि सैकड़ों इस्लामी भाई इस्लामी बहनें वो हैं जो वॉलंटियरली ये सारे काम कर रहे होते हैं। मैं भाई ये सोचता रहेगा, मैं कि ये अल्लाह के कैसे नेक बंदे हैं कि ये मतलब इतना कफन दफन वाला काम कर रहे हैं। और ये कफन दफन का काम भी एक वक्त लेता है, आप किसी के घर जाते हैं, उनको कफन प्रोवाइड करते हैं, फिर वो मैयत को इस पोजीशन में लाया जाता है कि आप उसको गुसल दे सकें, फिर आप गुसल देते हैं, फिर कफन देते हैं, फिर कुछ परना वगैरह होता है, फिर इनके बाद हमारे साईं भाई इनके जनाजे तक साथ जाते हैं, फिर बाद इनकी तदफीन तक साथ जाते हैं। तो ये समझे कि तकरीबन 8-10 घंटे की पूरी वो खिदमत होती है और बिला मुआवजा ये खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं, ये महल्ले में इलाके में सब कर रहे होते हैं, एहसास ही तो अच्छा। ये ना इनके भाई होते हैं, ना बहनें होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं, ये बस एक एहसास है कि हमें करना चाहिए कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया हमारे ज़रिए अदा हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि कोविड में भी जहाँ डॉक्टर मरीज़ को हाथ नहीं लगाता था, जहाँ इंतकाल हो जाए तो बाप का तो बेटा हाथ नहीं लगाता था, बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप दूर रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के इस्लामी भाइयों ने उन सालों में दुनिया भर में, जी हाँ दुनिया भर में, अगर मैं कहूं कि 1,000 लोगों को कफन दफन और गुसल दिया तो गलत नहीं होगा। और ये आपको याद आ जाए कि ये कोविड या कोरोना का वो मामला था जिसमें हर शख्स को ये डर था कि मुझे ना लग जाए
जी।
ये इस्लामी भाई जो जा रहे थे तो उनको, लेकिन उनको ये बस था कि ये बस था, इन्होंने किया और ये कर गए। सच्ची बात तो ये है, ये अपने हिस्से का काम कर गए और आज इनके खानदान को और इनकी नस्लों को याद है जिनके घरों में ये वाकियात हुए थे कि कोई नहीं आया हमारे घर में, अगर कोई आया तो ये दावत इस्लामी वाले आए थे, ये आए थे हमारे घर में और हम सब कमरे के अंदर बंद थे इस डर से कि कोविड हमको ना लग जाए। और ये मैयत हमारे घर की मैयत के पास ये खड़े हैं और ये कफन दफन दे रहे हैं, इनको कोई डर खौफ नहीं था कि हमको कोई लगेगा। ये क्या चीज थी जिसका कुछ तो नाम देंगे?
एहसास।
एहसास, एहसास और इस्लाह, एक उम्मत से मोहब्बत, सरकार की उम्मत से मोहब्बत, और ये फर्ज किफाया अदा होना चाहिए। उम्मत की ये जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। ये तरबियत थी मेरा मेरे लिए सुन्नत की। अल्लाह पाक इनका साया दराज फरमाए। ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल, हमें इस माहौल की कदर करनी चाहिए। मैं यही अर्ज करूंगा। आप कुछ कहेंगे इरफान भाई?
सर बस मैं इसी टॉपिक को और मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि इस बेहसी का मतलब मुझे अब समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूं ऐसा कि जो मैं कम से कम 2 से 3 लोगों की तो ये इसलाह कर दूं कि वो लाइन पर आ जाएं और इस मामले को कुछ बेहतर कर लें।
हम करें, मैं किसी को करने जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा, लेकिन अगर मैं सिग्नल पर गया हूं, अगर मैं ही खड़ा रहना शुरू कर दूं तो एक तो मैं खड़ा हूं और मेरे सामने को गया, मैं गया, मैं बेवकूफ हूं जो खड़ा हूं, चल भैया निकल, एक तो ये है। दूसरा मैं खड़ा रहा हूं, आप देखिएगा ये जो 1 मिनट और 20 सेकंड का जो सिग्नल है ना, जिस पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल काम है,
बहुत मुश्किल,
ठीक है, तकरीबन ये 120 सेकंड का सिग्नल है ये, ठीक है, 120 सेकंड का सिग्नल है और यहाँ एहसास होता है कि एक एक सेकंड एक एक मिनट कितना कीमती होता है।
टेम्परमेंट का भी मसला है।
नहीं, 3 मिनट खड़ा रहना जो है ना, ये समझो कि ये बस मौत है, बंदा गया गया, बोलो यार सिग्नल अभी बंद हुआ, लेकिन आप खड़े रहे, आपके सामने कोई सिग्नल तोड़, लेकिन आपको देखकर खड़ा होने वाला भी आ जाएगा।
सही, ऐसा ही होता
है या नहीं है?
बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही।
तो ये हर जगह पर है, आप कोई चीज करेंगे ना तो कोई आपको देखकर भी करने वाला बन जाएगा, आप किसी की मदद करेंगे तो कोई इसके साथ मदद करने वाला बन जाएगा। कोई नाबीना सड़क के किनारे खड़ा है और आप अगर उसके हाथ पकड़ कर अगर, तो आप देखिए जैसे ही आप यूं करेंगे ना, थोड़ी देर पहले नाबीना सड़क पर खड़ा था, एक गाड़ी नहीं रुक रही थी कि चलो नाबीना निकल जाए, लेकिन जैसे आप नाबीना का हाथ पकड़ कर सड़क पर आते हैं सारी गाड़ियां लाइन लगा कर रुक जाती हैं, इस एक आदमी की वजह से जिसने इस नाबीना का एहसास किया।
बेशक
एक आदमी सबकी तरबियत का सबब बन जाता है। वो बोला यार सब करेंगे तो मैं करूंगा, तो कोई भी नहीं करेगा।
ऐसा ही
मैं करूंगा, अगर सब करेंगे तब भी ठीक है, सब नहीं करेंगे जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपना काम करता
हूं, अपना काम करता
हूं। ये इसको यूं समझिए, एक साहब दरिया के किनारे बैठकर हाथ धो रहे थे, देखा तो एक बिच्छू दरिया में डूब रहा था। वो सांप को बड़ा रहम आया, कहा यार बिच्छू दरिया में डूब रहा है। उसने बिच्छू को पकड़ा, जैसे उसने बिच्छू को पकड़ा कि बिच्छू डूब ना जाए, बिच्छू ने उसको डंग मारा, उसे बिच्छू छोड़ दिया। फिर उसको फिर देख रहा बिच्छू डूब रहा है, आया बिच्छू डूब रहा है, उसने फिर बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंग मारा, उसे फिर बिच्छू छोड़ दिया। वो गुस्सा तो बहुत आया यार ये, उसने देखा फिर बिच्छू डूब रहा है, उसे फिर बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंग मारा। आदमी एक शख्स देख रहा था, उसको बोला नादान इंसान तो जानता नहीं है बिच्छू हैवान है, ये अपनी हैवानियत से बाज नहीं आएगा। तो उसने आदमी को देखकर कहा कि मैं जानता हूं ये हैवान है, अपनी हैवानियत से बाज नहीं आएगा, मैं इंसान हूं, मैं इंसानियत से कैसे बाज आ जाऊं।
सुभान अल्लाह, क्या बात है,
ये समझा गया।
तो मतलब इसमें ये हुआ कि आपको अगर जरूरी नहीं है कि एक दफा में वो अमल हो जाए, आप अपनी प्रैक्टिस
अपना काम करो। दुनिया क्या हो रही है, डूबता सूरज
हाँ
ऐलान कर रहा है, है कोई जो मेरी जगह ले सके, झोंपड़े में मौजूद एक चराग की आवाज आती है, मैं कोशिश करूंगा।
वाह 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 वाह
वाह वाह वाह, मैं कोशिश करूंगा।
बेशक
तू अगर दुनिया रोशन कर सकता है तो मैं किसी घर को तो रोशन कर सकता हूँ।
बिल्कुल,
मैं अपने हिस्से का काम करूंगा,
अपने हिस्से का।
हम सब अपने हिस्से का काम करें, अपने आस पड़ोस घर खानदान रिश्तेदार दोस्त अहबाब जितने भी आशिकाने रसूल आपको नजर आते हैं, दुखियारे गैर दुखियारे, जहां आपको लगता है कि मैं अपना कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। जानवरों पर भी रहम करना चाहिए। तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करो, अल्लाह पाक तुम पर रहम करेगा। जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है।
बेशक।
तो ये कुछ कुरान का हमारा हिस्सा था, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम अपने अंदर एहसास पैदा करें और जो बेहिसी हमारे यहाँ है उसको ख़त्म करें। अगर हमें कुछ बेहिसी है तो हम ख़त्म करें। अपने इर्द गिर्द बुज़ुर्गों को, वालिदैन को, रिश्तेदारों को देखें, किस किस के गम और दुख आप दूर कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। अगर खुश रहना चाहते हो तो खुशियाँ बांटो। किसी को खुश करेंगे ना कि मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पर भी आई जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
जजरी बात की दुनिया, जजरी बात की दुनिया।